अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले यौमे दफाए पाकिस्तान हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें 1965 की जंग को कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि इस नाइस हवाले से कि हमने दुश्मन को ना को चने चबवाए, बल्कि इस हवाले से कि कौम मुतहिद थी, कौम अपनी फौज के पीछे थी। और सामीन, इस तरह का जज्बा मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जिंदगी में मुझे सिर्फ एक दफा ही देखने में आया है, वो 1965 की जंग थी। उसके बाद से ऑफकोर्स हम लोग ये बहुत दावा करते हैं कि जब भी ऐसा कड़ा वक्त आएगा तो कौम सारी इकट्ठी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अजम्पशंस पे नहीं रहना चाहिए, मुतहिद होकर रहना चाहिए, क्योंकि यूनिटी में ही हमारी बका है, यूनिटी में ही बरकत है। और सामीन, आप लोग कैसे हैं? छुट्टी से वापस आ गए होंगे, बच्चों के स्कूल की तैयारियां शुरू, बच्चों के स्कूल भी जोन से आप शुरू हो चुके होंगे, मौसम भी तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत काफी कम हो चुकी है, और इंशाल्लाह रमजान मुबारक भी अब डोर स्टेप्स पे है अनकरीब। रमजान के दौरान हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खसूसी प्रोग्राम हम लोग शुरू करें, और उसके लिए हमेशा की तरह हमें फिर कम्युनिटी की हेल्प की जरूरत है। सामीन, हम लोगों में एक जो चीज बड़ी अजीब है वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि अगर कोई आदमी या अगर कोई टीम या अगर कोई कुछ लोग, एक ग्रोह कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको करने दिया जाए, बट दैट्स अबाउट इट। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच है, ये जो इस तरह से सोचना है, वो बेहतर नहीं होता। हमें सबको मिलकर के आगे आना चाहिए। हमेशा की तरह बार बार हम लोग ये कहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम करना या इस तरह से अपनी कम्युनिटी, अपने मुल्क की खिदमत करना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, और ऐसी भी बात नहीं है कि आपका एक आर्टिस्ट होना ही जरूरी होता है इन चीजों के लिए। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग वहां पे मौजूद हैं जहां पे हम आपकी तमाम मदद करेंगे। तो अगर सामीन, हमारे बहनों और भाइयों में से अगर कोई भी रमजान के सिलसिले में कोई रोजाना या हफ्तावार या पंद्रहवाड़े के तौर पे कोई प्रोग्राम करना चाहते हो तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, tahir@contactpakistan.com पे। इसी सिलसिले में जो दूसरी बात कहनी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में हमारा ये प्लान था कि रेडियो कॉन्टेक्ट पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन जो सी हैं वो वेब पे शुरू हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी ताखीर का सामना है तकनीकी वजूहात की बिना पे। लेकिन ये जो तारीख ताखीर है ये इस हवाले से नहीं है कि इट्स गोइंग टू टेक लाइक मंथ्स। इंशाल्लाह चंद हफ्तों में हम लोग ऑनलाइन होंगे, और अगेन हमारे पास 24 घंटे हैं सामीन, आप चाहें तो कोई भी प्रोग्राम अपना शुरू कर सकते हैं। हमारे स्पॉन्सर नेस्मा इंटरनेट कंपनी जो है वो भी चाह रहे हैं कि कम्युनिटी आगे आए, और कुछ प्रोग्रामों में प्रोग्राम तरतीब देने के हवाले से वो लोग एक माहवार इसके सिलसिले में एक मुआवजा भी देने को तैयार हैं, जिसके लिए इंशाल्लाह हम जरूर अनकरीब एक अलर्ट भेज रहे हैं। तो अगर आप में जज्बा है मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करने का, और शौक है इस मीडियम के हवाले से आगे बढ़ने का, तो जरूर आइए। हम लोग आपके लिए यहां पे बैठे हुए हैं, आप इंशाल्लाह हेल्प करेंगे और आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर ये तमाम जो चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं, जो तरीकाकार है, वो सब हम आपको बताएंगे। सामिन, आज के प्रोग्राम की तरतीब कुछ यूं है कि आपको आज हम लोग लाहौर में प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इनफैक्ट मेरी अपनी छुट्टी के दौरान मैंने तकरीबन 2 या 3 दिन जो हैं वो इस पे सर्व किए, ये जानने के लिए कि इन प्रॉपर्टी के हवाले से सिचुएशन क्या है, प्रॉपर्टी किस तरह की अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग जो मुल्क से बाहर हैं काफी कंफ्यूज रहते हैं, हमें कोई भी इतला सही नहीं दे रहा होता, और ज्यादातर जो है वो बोगस जो अखबार में चीजें आ रही होती हैं वो हमें मालूम हो रही होती हैं। तो इस सिलसिले में आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। इसके अलावा मजे की बात यह है कि रियाद में एक काइट फ्लाइंग क्लब है जिसके बारे में हमें पता चला है, तो वो हजरात जो पतंगबाजी करते हैं उनके लिए नवीद अच्छी खबर यह है कि अब आप भी वो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस बहुत अच्छी इस खेल से, इस स्पोर्ट से। जी हाँ, हमारे यहां कुछ लोग इसके बारे में तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो गैर जरूरी है। तनकीद जी इस हवाले से जरूर कीजिए कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान में पतंग उड़ाई जाती है तो डेफिनेटली वो उस हवाले से तो बिल्कुल गलत है, लेकिन एक अच्छे माहौल में खुले मैदान में पतंग उड़ाने में हर्ज नहीं है। और अगर आपको इन चीजों का शौक है तो इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देंगे उन लोगों की कि जिनके ये क्लब है, और ताकि आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकें और अपनी इस अगर आपको शौक है तो उससे लुत्फानंदोज भी हो सकें। इसके अलावा कुछ टिप्स होंगी जो आपको हम देंगे, आपके फरमाइशी गाने भी हैं, और फरमाइशी गानों से मेरे जहन में आया कि वक्त है अब पहले फरमाइशी गाने का जो हम आपको सुनाएंगे। सामाइन, पहला गाना जो हमें फरमाइश किया गया है वो माफ कीजिएगा, रशीद सादिक साहब ने रियाद से किया है, और ये गाना है बरसात, अदनान समी ने गाया है। सामीन, इस सिलसिले में थोड़ी सी हमें ये प्रॉब्लम थी कि शुड वी बी प्लेइंग अदनान समी, क्योंकि ये गाना रिकॉर्ड भी भारत में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, और अदनान समी रहते भी वहां पे हैं, और इस सिलसिले में जब हमने तफ्तीश की तो हमें ये मालूम हुआ कि रेडियो पाकिस्तान जो है वो इस गाने को ये नहीं समझता कि कोई भी जो चैनल्स हैं पाकिस्तान के वो इस गाने को ना सुनाएं या ना दिखाएं, और रेडियो पाकिस्तान जो है अदनान समी की तमाम एल्बम्स को प्ले करता है, तो इसलिए सोचा यह गया कि कोई बात नहीं, हम भी ये गाना जो है सुनाएंगे। तो ऋषि साहब, आपकी पसंद का गाना बरसात बाय अदनान समी, आइए सब मिलकर के सुनते हैं।
तुम्हारा ایک نغمہ تیرے پیار کا جیسے کوئی سر ملا ہو دل کے تار سے دل کے تار کا پل کی ہنسی میں یوں ہی دل لگی میں یہ دل گیا ہمیں کیا ملا ہے تمہیں تو میرا دل مل گیا لے کے پیار آنکھوں میں لے کے پیار آنکھوں میں
جی رشید بھائی، امید ہے آپ کو آپ کی فرمائش کا گانا آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں ہمیشہ لکھتے رہیے، بہت بہت شکریہ آپ کی فرمائش کا. سامعین، اس سے پہلے کہ پراپرٹی کی بات ہو، ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دینی ہے ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے اب اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں جانا چاہ رہے ہیں اور خصوصاً میڈیکل کی فیلڈ میں، یعنی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. سامعین، وہ بچے جو کہ ایف ایس سی کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے ایک ضروری ہے، پاکستان میں مینڈیٹری ہے کہ وہ ایک انٹری ٹیسٹ دیں گے اور انٹری ٹیسٹ کے بعد وہ اس لسٹ میں شامل ہوں گے کہ جس میں میرٹ کی بنیاد پہ ان کو مختلف جو کالجز ہیں اس میں ان کو داخلہ دیا جائے گا، جو مختلف میڈیکل کالجز ہیں. ایسے بچے جو کہ اس کے علاوہ، یعنی اگر وہ اے لیول کر کے یہاں سے اس ملک سے جاتے ہیں اور ان کے لیے کیا کنڈیشن ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی انٹری ٹیسٹ دیں گے. اس میں سامعین، ایک جو چیز ضروری ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا پڑتی ہے. اس کے اسپیشل ادارے ہیں، اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جو کہ منیمم 2 ماہ کے لیے آپ کو اس انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرواتی ہیں اور اس کے بعد آپ انٹری ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوتے ہیں. ایسے بچے اب ایسے بچے بھی ہیں ہمارے جو کہ سیٹ کرتے ہیں، یعنی امریکن سٹینڈرڈ میں وہ اپنا ہائر سکول جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے، وچ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل ایٹ آل، वो ये है कि जो बच्चे सेट करेंगे उनको एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो है मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो जरूरी बात इस सिलसिले में है वो ये है कि बच्चों के लिए जो लोग जिनके जो वालदैन जिनके बच्चे जो उनसे हैं वो ए लेवल्स कर रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि वो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स मिनिमम जो है वो अच्छे दर्जे में पास करें। अगर वो फिजिक्स नहीं पढ़ते तो वो अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो उस सिलसिला में ये है कि मैंडेटरी है, जरूरी है कि उनका फिजिक्स पढ़ना। तो एक ये छोटी सी टिप आपको देनी थी। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी की जानिब जो कि लाहौर में। अच्छा सामीन, इसमें जो पहली बात यह है कि हम एक जो बात सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, तो बेसिकली उसकी महंगी होने की वजह भी हम लोग खुद हैं कि जब हमारे ऐसे हम वतन जो कि वेस्ट में प्रॉब्लम्स के बाद 9/11 के बाद मुल्क में वापस आए और ज्यादातर वो लोग कि जो कि गैर कानूनी तौर पे इन ममालिक के अंदर थे, वेस्ट के ममालिक में थे, जब ये वापस आए तो उनको जाहिर है कि रहने के लिए घर चाहिए थे, तो मुंह मांगी कीमत के ऊपर उन लोगों ने जमीनें खरीदी, घर खरीदे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल जो है वो रुझान पैदा हुआ कि जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी किसी भी हवाले से जिन जमीनों की कीमत 50 लाख है, 1 करोड़ है, कोई मंतक नहीं बनती, कोई तुक नहीं है कि उनकी कीमतें वो होती या वो वैल्यू करती हैं उस कीमत को। तो अब जबकि मार्केट के अंदर वो लोग अब नहीं हैं कि जो खरीदें ऐसी प्रॉपर्टीज को, तो लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अंडर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, यानी अंडर डेवलपमेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी स्कीम्स के जिनके अंदर जो जमीन है अभी अक्वायर की जा रही है और अभी प्लॉट्स नहीं बने हैं, या वो स्कीमें कि जिनमें प्लॉट्स भी हैं, तमाम की जो कीमतें हैं वो 30-40% तक नीचे जा चुकी हैं। मार्केट में मुकम्मल तौर पर स्लम है, विच इज वेरी गुड कि ठीक है जो बायर है जैसे हम लोग हैं हमें नहीं खरीदना चाहिए, इंतजार कीजिए आप, तो जो सेलर्स हैं वो उस रियलिस्टिक प्राइस पे आएंगे कि जिसमें वो प्रॉफिट भी कमाएं लेकिन उसके साथ नाजायज मुनाफाखोरी जो चाहिए वो खत्म हो। तो सूरत हाल जैसे मैंने कहा कि ऐसे है कि इस वक्त स्लम है मार्केट में, मार्केट में प्राइसेस 30-40% तक कम है, लेकिन ये जो प्राइसेस कम हुई हैं ये ऐसी प्रॉपर्टी की, ऐसी जायदाद की हैं कि जो कि अभी तामीर नहीं हुई, यानी जो तामीर हुए हुए घर हैं वो अभी भी महंगे हैं। और क्योंकि वो ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, परहैप्स वो सोचते हैं कि नहीं घर बिकेंगे, तो उनकी कीमतें जो सी हैं वो अभी भी ज्यादा हैं। यानी मिसाल के तौर पे लाहौर में जोहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, माल टाउन, माल टाउन एक्सटेंशन और इस तरह की जितनी अजाफी बस्तियां हैं, इसमें 5 मरले के घर की जो कीमत है इस वक्त बने हुए घर की, रिगार्डलेस के वो कमर्शियल हो या किसी ने अपने लिए बनवाया हो, रिगार्डलेस के वो 1 साल पुराना हो, 6 महीने पुराना हो या 10 महीने पुराना हो या 5 साल पुराना हो, उनकी जो कीमत इस वक्त रेंज कर रही है वो 35 लाख से लेकर के 45 लाख रुपए तक है, यानी जो तामीरशुदा घर हैं। और इसमें आपको जिन में जो एक बात ये भी रखनी होती है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स आपकी डील करवाते हैं वो 1% आपसे कमीशन भी लेते हैं और उसके अलावा कुछ अजाफी अखराजात भी हैं यानी ट्रांसफर वगैरह के। तो घरों की सिचुएशन ये है, लेकिन उसके मुकाबले में सॉरी एक और बात जो आपसे कहनी थी वो ये कि इसी तरह से जैसे 5 मरले का घर जो है वो इस प्राइस रेंज में है, 10 मरले का घर जो है वो 60 लाख से शुरू हो करके 75 लाख तक भी जाता है। आपको पुराने घर जो से हैं शायद आपको 55 लाख तक भी मिल जाएं ऐसी अजाफी बस्तियों में, या ऐसी अजाफी बस्तियों के ऐसे ब्लॉक्स में कि जिनमें सड़कें छोटी हैं और नेबरहुड इज नॉट दैट वेरी वेल, कि जिसमें मार्केट्स वगैरह नजदीक हों तो थोड़ी सी प्राइस कम भी है, लेकिन सिचुएशन ऐसे ही है। और कैनाल के घर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं 85 लाख 90 लाख से ऊपर हैं। ये तो सूरत हाल है हमारे तामीरशुदा घरों की। अभी हम बात करेंगे प्लॉट्स की, प्लॉट्स में भी किस्में हैं, यानी ऐसी स्कीमें कि जिसके अंदर अभी प्लॉटिंग हो रही है, लोगों ने उनकी फाइलें खरीदी, फाइलों के बारे में भी आपको बताएंगे, या ऐसे प्लॉट जो कि अब डेवलप हो चुके हैं यानी वहां पे गैस, बिजली, पानी, टेलीफोन और सड़कें वगैरह बन चुकी हैं, और खुसूसन ऐसी स्कीमें जैसे बहरिया टाउन है और जिनसे हमने बात भी की और कुछ और स्कीमें हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन ये सब बताने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक होगा हमारा एक और नगमा, और ये नगमा है जनाब जिसे ढूंढने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि ہمارے دوست عبد الطیف صاحب الخبر سے جنہوں نے اس کی فرمائش کی تھی, ان سے ہمیں کافی کمیونیکیٹ کرنا پڑا اس کو سمجھنے کے لیے گانا کون سا. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا گانا ہے پاما قاد شاہ. آئیے سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو, اور پھر واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پلاٹس کے بارے میں. وہ پلاٹ جو کہ ابھی بن رہے ہیں, وہ پلاٹ جو بن چکے ہیں, وہ اسکیمیں جو کہ گورنمنٹ نے کی اپروڈ ہیں, اور آپ کو کیسے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سی اسکیمیں جو سی ہیں وہ گورنمنٹ کی اپروڈ نہیں ہیں, فراڈ سے بچنے کے لیے, کیونکہ پاکستان میں اس فیلڈ کے اندر یا اس انڈسٹری کے اندر لائبلٹی فیکٹر جو ہے یا رسک فیکٹر از کوائٹ ہائی. ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں پہلے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی.
دل سے جانی اج پہ تھی دے جدا
उम्मीद है सामिन आपको अताउल्ला इसाखेलवी का ये गाना बहुत पसंद आया होगा, मैंने भी इंजॉय किया है। सामिन इससे पहले कि प्रॉपर्टी की तरफ दोबारा हम लोग वापस आए, हमारे कुछ दोस्त इंतजार कर रहे होंगे कि उनको काइट फ्लाइंग क्लब के बारे में बताया जाए कि जो रियाद में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले जो हमारे पास खबर है वो ये है कि अलखबर में भी इस तरह के क्लब हैं और जद्दा में भी हैं, हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप में से कोई भी सामीन जो इन क्लब्स के बारे में जानते हो प्लीज उन्हें की हमें रजू करें, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें ताकि हम कम्युनिटी को बता सकें और वो लोग जो कि इस खेल से शगफ हासिल करना चाहते हैं, इसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी उनको ज्वाइन कर सकें। तो रियाद के सिलसिले में ये है कि हमें ईमेल के जरिए हमारे एक कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के मेंबर अतीक अकबाल हैं जिन्होंने हमें रियाद से लिखा कि उनका एक फ्लाइंग क्लब काइट फ्लाइंग क्लब है जिसको जो भी लोग जिनको शौक हो देखने का एंजॉय करने का या पतंग उड़ाने का शौक हो वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सामीन इसमें एक जहन में बात रखिए कि आजकल मौसम बहुत प्लेजेंट होता है, मॉर्निंग में दिन के वक्त काफी अच्छा होता है और ये लोग जो पतंग उड़ाते हैं ये भी अर्ली मॉर्निंग यानी फजर पड़ने के बाद यानी सूरज जिस वक्त निकल रहा होता है उस वक्त उड़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और जो पतंग उड़ाई जाती है वो रियाद से थोड़ा सा बाहर जाकर के है। आप अगर इस ग्रुप को इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो या जाकर के सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो देखना चाहते हो तो आप अतीक भाई से मोबाइल फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 050-3428-709, दोबारा से कहूंगा 050-3428-709। और अतीक भाई कहते हैं कि अगर मेरा फोन आपको नहीं मिले तो आप मोहसन हमीद डार भाई से भी आप बात कर सकते हैं और उनका फोन नंबर है 050-286-7294। तो ये है उस क्लब के बारे में कि जो कि यहाँ पे रियाद में है और पतंग उड़ाते हैं ये लोग। अपनी तमाम जो एक्सेसरीज हैं गेयर है इस स्पोर्ट के लिए वो पाकिस्तान से लेके आते हैं। इनसे बात कीजिए, आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, मैं तो जरूर उड़ाना चाहूंगा और मैं इंशाल्लाह इन लोगों को जाकर के कभी मिलूंगा भी और आप लोगों को इसके बारे में तफसील से और भी बताऊंगा। तो आइए सामीन अब चलते हैं वापस हम लोग प्रॉपर्टी की जानिब। मैं बात कर रहा था अताउल्ला साहिलगी के गाने से पहले कि मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी की ऑप्शन हमें मौजूद हैं। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि जनाब एक दो साल के अंदर वो पाकिस्तान से जा रहे हैं और पाकिस्तान सॉरी वापस जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको बना बनाया घर मिल जाए और वो ऐसी स्कीम्स जैसी कि बहरिया टाउन है इसके बारे में बहुत ज्यादा वो बम्बार्ड हमें जो किया जाता है एडवर्टीजमेंट से टीवी पे के मुख्तलिफ चैनल्स पे उसके बारे में बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि बड़ी अच्छी स्कीम है हमें भी जाकर के वहां पे घर लेना है। तो सामीन वो लोग जो लाहौर से वाकफियत रखते हैं उनके लिए अर्ज है कि बहरिया टाउन की कोई भी स्कीम जो सी है वो लाहौर के अंदर नहीं है और जैसा कि बहरिया टाउन के जो ओवरसीज इनक्लेव है और वो जो घर वो बना करके तकरीबन 5 मरले का छोटे छोटे घर बना करके जो बेच रहे हैं काफी हैवी प्राइसिस पे वो मुस्लिम टाउन की जो नहर है, जो उसका पुल है पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, वहां से रायविंड रोड की तरफ तकरीबन 27 किलोमीटर पे है। और बेसिकली उनकी कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि जिसको आप एक दो साल के अंदर जाकर के वहां पर रहें और आपको अगर दूध भी लेना हो तो आपको 10 किलोमीटर बाहर ना आना पड़े। कुछ ऑप्शन ऐसी भी हैं कि जैसे कि बहरिया टाउन के साथ से बिल्कुल मुल्तान रोड गुजरती है, लेकिन फिर भी उस हैवी ट्रैफिक रोड पे जाना खतरे से खाली नहीं है। और इर्द गिर्द कोई और आबादियां नहीं है कि आपको एक नेबरहुड का एहसास हो। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बहरिया टाउन के जो घर बना रहे हैं वो बहुत अच्छे बना रहे हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए कि जो कि कम्पैक्ट हाउसेज में रहना पसंद करते हैं। लेकिन प्राइस के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में उनकी जो प्राइसिंग है वो किसी भी हवाले से हमारे वो लोग जो हलाल के पैसे कमाते हैं उनके लिए वो पे करना बहुत मुश्किल होगा। और बहुत एग्जेजरेटेड प्राइसिंग है, यानी तकरीबन 3-4-5 मरले का जो घर है, वेरी नाइसली बिल्ट, बहुत अच्छा नेबरहुड, बहुत खूबसूरत, वो घर उसकी प्राइसिंग जो उसकी 50-60 लाख के करीब है, विच इज इट्स अ जोक। यानी वो घर पॉसिबली एक मियां बीवी के लिए तो काफी होगा, लेकिन एक फॉर अ फैमिली ऑफ अ फोर किसी हवाले से भी वो इस तरह का घर नहीं है कि वो लिया जाए इतने पैसे देकर के। तो बहरिया टाउन के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप उनकी फाइलें खरीद सकते हैं। फाइलें क्या होती है ये भी आपको अभी मैं बताता हूं। फाइलों से मुराद ये होती है कि ऐसे प्लॉट्स जो कि बन चुके हैं या अभी वो स्कीम जो अभी बना रही हैं, उनकी उनके राइट्स यानी उनके हकूक आपको मुंतकिल कर दिए जाते हैं। अब आप वो प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि उस प्लॉट पे आप अगर सोचते हैं कि अगर आपने अगले तीन चार साल में घर बनाना है तो हमाकत होगी, क्योंकि ये शहर से बहुत बाहर स्कीमें हैं। और ऑल्दो बहरिया टाउन अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट्स अ वेरी नाइस सेटअप आई मस्ट एडमिट, लेकिन अगर आप बहरिया टाउन में घर लेते हैं या बहरिया टाउन में आप प्लॉट लेते हैं तो ये जिन में रखिए कि वहां पे रहने के लिए आप 10 साल बाद वहां पे जाइए। उससे पहले जाना जो है वो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के हवाले से या नेबरहुड के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज के हवाले से या डे टू डे लाइफ के मैटर्स को हैंडल करने के हवाले से नामुनासिब है। प्राइसिंग के हवाले से बहरिया टाउन की जिस तरह से प्राइसिस उनकी फाइलों की बढ़ी, यानी मैंने एक हकूक खरीद लिए एक प्लॉट के और वो उसको जो हकूक के लिए जो मुझे परमिट दिया गया, जो कागज दिए गए उसको फाइल कहा गया, वो फाइल ऐसी फाइल जो कि उनके ओवरसीज इनक्लेव या दूसरी जो उनके मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं उनके अपने माफ कीजिएगा जो उनके डेवलप्ड एरियाज हैं, यानी सड़कें वड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और पानी बिजली वगैरह का वो बंदोबस्त कर रहे हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद उन फाइल्स की जो कीमत है वो 50-60% यानी अगर आप उसको एक साल पहले देखें तो नीचे आ चुकी है और मार्केट में बायर नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस हवाले से अगर आप बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं रहने के हवाले से या रहने के हवाले से तो मेरे ख्याल में अभी मत कीजिए। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि अब उनकी एक फाइल खरीद ली जाए और मैं जनाब 5-6 साल के बाद जाकर के उसको बेचूंगा और इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसमें प्रॉफिट लूंगा तो फिर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आजकल प्राइसेस काफी डाउन है। लेकिन निगोसिएशंस भी बहुत हैं, यानी अगर आपको एक फाइल जो पहले 18-19 लाख की मिलती थी 5-6 लाख में है, 5-6 लाख रुपए में है, वो भी आपको 4-4.5 लाख में मिल जाती है और साथ में आप उसकी किस्तें पे करते हैं। मैं फिर दोबारा से वापस आऊंगा इस कॉन्सेप्ट पे कि ये फाइल्स क्या होती हैं। होता ही है सामीन के एक प्लॉट अनाउंस हुए कि जनाब हमारे पास 2000 प्लॉट हैं, एक कनाल के 10 मरले के ब्ला 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 ब्ला, और हम उसको 10 लाख रुपए में बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपको सिर्फ इनिशियली पेमेंट जो है 3 लाख की करनी है, उसके बाद आप साल में 2 दफा में किस्तें पे कीजिए और जब आपकी किस्तें पूरी हो जाए तो प्लॉट आपका हुआ। अब जो इनिशियली लोग खरीदते हैं वो जाकर के इनिशियल पेमेंट की, यानी वो 10 लाख के प्लाट के लिए 3 लाख की पेमेंट की और उन्होंने वो फाइल ले ली, उसके बाद उस फाइल की जो एक्चुअल गुडविल है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी वो 3 लाख की वो फाइल जो है वो बंदा कहता है जी कि मैं 5 लाख में दूंगा, यानी वो 3 लाख रुपया तो उनको दे चुका है, 2 लाख वो आपसे कमाना चाहता है। और साथ में आपको करना ये भी होगा कि बाद में उस प्लॉट की जो अकसात है वो आपको पे करनी होगी। अगर आप फिर भी इस रूट पे जाना चाहें तो एक चीज ध्यान में रखिए कि अमूमन जो इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने एक एक दो दो अपनी एक साथ डिले की होती हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट किए करके बैठे होते हैं, मार्केट में स्लम है, डर गए हुए हैं कि अगर और पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो पता नहीं उनका क्या बनेगा। तो जिस वक्त आप वो फाइल लेते हैं और आपको पता ये चलता है कि जनाब पिछले 6 माह से उन्होंने अपनी 2 किस्तें नहीं दी, तो आपको वो अकसात भी देनी होती है, ऑफकोर्स वो आपको देनी होगी, लेकिन उसके साथ जो फाइन है ऐसी प्रॉपर्टी स्कीम्स का वो भी आपको पे करना होता है। तो फाइलों के हवाले से ये, और अब फाइलें होती हैं 2 अकसाम की, एक फाइलें बोलते हैं उनको ओपन, एक फाइलें होती हैं जिनको बोलते हैं क्लोज। ओपन फाइलें वो होती हैं कि जिसमें आपके नाम ट्रांसफर कुछ भी नहीं होता, जिसके हाथ में फाइल उसका वो प्लॉट बहुत रिस्की होता है, यानी अगर आपसे वो फाइल खो गई और किसी ने उठा ली तो वो उसकी अब मलकियत है। तो अगर आप कभी भी इस तरह की फाइल्स में इन्वेस्ट करें तो आप बहुत जरूरी है कि आप वो कोई स्कीम है जो भी है उसको अपने नाम लाजमी ट्रांसफर करवाएं, और वो जो ट्रांसफर करवाने के बाद जो फाइल की कंडीशन होती है वो होती है कि क्लोज फाइल है, ये आपके नाम है। यानी अगर वो फाइल गुम भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से वो क्लेम करके अपनी अपनी जो आपकी मलकियत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 तरह की फाइलें हुई। अब कुछ स्कीमें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आप जब जाते हैं, बहरिया टाउन है जैसे आपको मैं बताया, इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें हैं और बहुत सारे स्कैम्स हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में आपको बहुत सी स्कीमें मिलती हैं जिसमें लोग आपको यही फाइलें बेच रहे होते हैं, जनाब कि ये हमारी ABC स्कीम है और इस ये 3 साल में डेवलप हो जाएगी, इसमें ये भी होगा, इसमें वो भी होगा, और तमाम तरह के आपको चकमे दिए जाते हैं। उसमें जो आपको देखना होता है कि जो भी वो स्कीम है क्या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अप्रूव्ड है कि नहीं, और उसकी वैलिडिटी उसकी अप्रूवल की है कि नहीं, और इस पे आपकी मदद जो कर सकते हैं वो अच्छे ऑनेस्ट जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं वो कर सकते हैं। सामने इस सिलसिले में आपको ये बताना है कि हम कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट पाकिस्तान में डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें रिलायबल वो लोग जो कि हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी हमारी तफ्तीश करने के बाद हम ये समझें कि ये ईमानदार हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है उनको पैसे कमाने हैं लेकिन ईमानदार हैं, वो लोग जो आपको सही मशवरा देंगे, इस तरह के लोगों से हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम अपने सऊदी अरेबिया के सामेईन के लिए उन लोगों की सर्विसेज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें आप उनसे मशवरे भी दे सकेंगे, और अगर आप चाहें तो उनके साथ बिजनेस भी कर सकेंगे, लेकिन दे विल बी फुली इंडोर्स्ड बाय कॉन्टैक्ट पाकिस्तान ग्लोबल टीम। तो आते हैं जनाब कि ये जो स्कीमें होती हैं, स्कीमों में 2 तरह की स्कीमें होती हैं, एक वो स्कीमें जो डेवलप हो गई हुई हैं और एक वो जो स्कीमें जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं और डेवलप होंगी, यानी उसके लिए वो स्कीम जो सी हैं वो अभी जमीन वगैरह हासिल कर रही हैं, यानी वो आपसे पैसे लेकर के जमीन खरीदते हैं, उसमें से पैसे कमाते हैं, उसी में से वो डेवलप करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल, इसके बारे में आपको बताते हैं जनाब। लेकिन इससे पहले क्यों ना एक और गाना हो जाए, और ये गाना है जलाल ग्रुप का आदत, और इसकी जो फरमाइश की है वो आलिया सादिक ने की है रियाद से। आइए पहले वो गाना सुनते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो स्कीम्स होती हैं इसमें जो डेवलप हो रही हैं और जो डेवलप हो गई उनमें फर्क क्या है और आपको क्या देखना होता है और उनमें प्राइस मार्जिन या उनमें फर्क क्या होता है। आइए गाना पहले सुनते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से जिंदगी से कोई शिकवा
जैसी है तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम न बन जाए, हे 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 ओ तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने
ویلکم بیک سامعین، امید ہے آپ کو یہ گانا پسند آیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور کچھ ٹپس آپ کو دینی ہے پراپرٹی کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے جو چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کتنی ڈیولپ سکیمز ہیں، ایکسیس روٹس کیا ہیں، یعنی سڑکوں کی کنڈیشن کیا ہے، اور اٹ سیلف جو سکیم ہے اس کے اندر بھی جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ کتنی چوڑی ہیں۔ کیونکہ ذہن میں یہ رکھیے کہ ابھی ان جس طرح کی سڑکیں، مطلب 50 فٹ چوڑی جو سڑک ہے وہ کافی نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت گرین بیلٹ بنتی ہے گھروں کے ساتھ تو جو سڑک کا حصہ باقی بچتا ہے جس میں آپ گاڑی پارک کر سکیں اگر کرنی پڑ جائے اور آپ کو وہاں سے گزرنا ہو تو کافی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو سکیم ہے اس کے نزدیک اور کون سی سکیمیں ہیں جو کہ ڈیولپڈ ہے، اور جو ایکسیس روٹس ہیں، جو سڑکیں ہیں وہ کیسی ہیں، اور آف کورس جو آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو ضروری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد نیبرہڈ میں مارکیٹس کیا ہیں، وہاں پہ کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، آپ جو شہر ہے اس سے کتنا دور ہیں، یعنی ہاسپٹلس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، شاپنگ مالز، کھانے پینے کی دکانیں، یہ سب کچھ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ ایسی سکیمز جو کہ ڈیولپ ہو گئی ہیں ان کی فائلز، اور ایسی سکیمز جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کی فائلز۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سکیمز ہوتی ہیں ڈیولپ وہ یہ ہوتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے پلاٹنگ کر دی، پہلے زمین خریدی، پھر پلاٹنگ کر دی، اس کے بعد انہوں نے سڑکیں بنا دی، بجلی کا بندوبست کر دیا، گیس کا بندوبست کر دیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پلاٹس خریدتے ہیں، اور ان پلاٹس کی جو قیمت ہے بنسبت ان پلاٹس کے کہ جہاں پہ ابھی زمین اکوائر کی جا رہی ہے، کافی فرق ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ سکیمیں جو کہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں ان میں انویسٹ کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو جو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سکیم ہے کیا وہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے، اور ایل ڈی اے سے، یا ہاؤسنگ جو کوآپریٹو سوسائٹیز کا ادارہ ہے حکومت پنجاب کا، اس سے وہ منظور شدہ ہے، اور اس کے علاوہ آف کورس یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتی ہے وہ شہر سے دور کتنی ہے، اور جو ڈیولپ سکیمز ہیں اس سے دور کتنی ہے، اور آیا جو اسکیم جس میں آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو ادارہ ہے یا وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے کون سی اسکیم بنائی ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے. اس حوالے سے آپ کو جو ریکمینڈیڈ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو میرے خیال میں اگر آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور ایون لیونگ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو جس اسکیم کے بارے میں نے انویسٹیگیٹ کیا وہ تھی اسٹیٹ لائف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ حکومت پنجاب کی منظور شدہ ہے. اور اسٹیٹ لائف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے چند بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے اور اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے. ان کا فیز ون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے جس میں سڑکیں بجلی پانی گیس سب کچھ موجود ہے اور یہ پرسائسلی بالکل جو لاہور کا ڈیفینس ہے اس کے ساتھ ہے. یعنی جو ڈویلپڈ ایریا جو ڈویلپ اسکیم جس کی فیز ون کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سے اگر آپ ڈرائیو کیجئے گا کینٹ کی جانب تو ہارڈلی اٹ از 10 منٹس ڈرائیو کے آپ کینٹ کے اندر ہوں گے وچ از ڈیفینیٹلی ویری اٹریکٹیو. اور ان کی جو دوسری اسکیم اس وقت وہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے لیے وہ زمین جو ہے وہ اکوائر کر رہے ہیں وہ ان کا فیز ٹو ایکسٹینشن ہے اور اس کی فائلیں بھی اویلیبل ہیں اور اس کی کلوز فائلیں اویلیبل ہیں. پرائس جون سی ہے اسکیم کی فیز ٹو ایکسٹینشن کی جو فائل ہے وہ تقریباً 18 لاکھ کی آج سے چار ماہ پہلے تھا کہ ایک کنال کے پلاٹ کے لیے. اس وقت وہی جو فائل ہے وہ 8 سے 9 لاکھ روپے میں آپ کو ملتی ہے جس میں 3 قسطیں بھی پے ہوئی ہیں. یعنی اس کی ٹوٹل قسطیں جو سی ہیں وہ 10 ہیں. یعنی انیشلی جب اسکیم بنی انہوں نے اپنے امپلائیز کو اپنے ممبرس کو جو دی وہ جو زمین تھی وہ 10 لاکھ روپے میں کنال دی. اور اس حوالے سے جو آپ اس پہ جو زیادہ پیسے پے کریں گے تقریباً 30-40% اپ ٹو 50% بھی آپ زیادہ پے کریں گے جس وقت آپ کے پاس وہ پلاٹ آ جائے گا. ریکمینڈیڈ اسکیم ہے, فراڈ نہیں ہے, سب کچھ کنفرمڈ ہے. اور اس کے حوالے سے جو ایک اور بات آپ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کلوز بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی کی ممبرشپ لینی پڑے گی جس کے لیے 10-12 ہزار روپے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے. لیکن فار شیور پھر جو ہے کہ ملکیت آپ کی ہوگی. لیکن اگر آپ ایک دو سال میں واپس جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے وہ ان کی ڈیولپڈ جو فیزز ہیں جن میں بہت کھلی سڑکیں ہیں, پانی بجلی اور گیس کا بھی بندوبست اور گھر بن بھی رہے ہیں, وہاں پہ آپ گھر خرید سکتے ہیں. ڈیفینس کی جہاں تک بات ہے, ڈیفینس کی پرائس ہمیشہ سے ایگزیجریٹڈ رہی ہے اور اس کی جو بھی فیزز ابھی تک جنگل ہیں وہاں کی بھی پرائس ابھی زیادہ ہے. لیکن اس حوالے سے اگر دیکھا جائے, یعنی جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ فروری میں فیز 7 فیز 8 کی جو فائلیں 80-80 لاکھ روپے میں بک رہی تھیں اس وقت وہ 40-45 کے درمیان میں ہیں اور وہ بھی آپ کو ان کا بھی بائر نہیں ملتا. تو یہ بھی مت سوچئے کہ جو فیسلٹیز ڈیفنس آپ کو دیتا ہے وہ دوسری اچھی اسکیمز نہیں دے رہی. ایک سرٹن سٹینڈرڈ لفٹ ہوا ہے پاکستان میں ان سوسائٹیز میں کہ جیسے انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے اور دوسری سہولیات, ریکریشن سینٹرز اور پارکس وغیرہ یہ سب لوگ اب بنا رہے ہیں. لیکن کچھ اسکیمیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ڈاؤٹس ہیں. میں ان اسکیموں کے نام نہیں اس لیے لینا چاہوں گا کہ اٹ کوڈ بی لیگلی رانگ, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی اسکیم جس میں آپ انویسٹ کرنا چاہیں میک شیور یور سیلف کہ گورنمنٹ کی اپروڈ ہے اور ابھی تک گورنمنٹ کی اپروڈ ہے, یعنی ان پہ کوئی ایسا ابھی تک آبزرویشن نہیں ہے. اور ذہن میں یہ بھی بات رکھیے کہ حکومت پاکستان اس وقت ایک بل جون سا ہے وہ منظور کر رہی ہے جس میں دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ویری اسٹرکٹ ود دی پراپرٹی ڈیلنگ کہ جس کی وجہ سے جو پرائسز وغیرہ بڑھی تھیں اور جس میں لوگوں نے چند ایک خصوص ایک طبقے نے یا ایک گروہ نے جو فائدہ اٹھایا ہے اربوں روپوں کا اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو سامعین یہ آج کا پروگرام تھا جس میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کچھ تھوڑی سی باتیں لاہور میں پراپرٹی کے بارے میں. ہاں ایک ضروری بات یہ کہ وہ لوگ جو شہر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں محلوں میں اندرون لاہور, تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو ایریاز کمرشل نہیں ہیں وہاں پہ آپ کو جو گھر ہیں یعنی 5 مرلے کا گھر کمپیئرنگ ٹو جوہر ٹاؤن میں جو 40-45 لاکھ ہے, آپ کو 5 مرلے کا اچھا بلڈ ہوا ہوا گھر جو ہے وہ آپ کو 30 لاکھ تک مل جاتا ہے. یعنی آپ کو وہی ماحول ملتا ہے کہ جو آپ چھوڑ کر کے شاید پاکستان سے آئے تھے. تو سامعین یہ تھی کچھ باتیں آج کی ضروری بات پروگرام میں. امید ہے آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوئی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو ضرور ہمیں لکھیے. میرا ای میل ایڈریس ہے tahir@contactpakistan.com. سامعین ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہمیں مشورے دیجئے, تجاویز دیجئے تاکہ ہم ضروری بات میں ان موضوعات کو ڈسکس کر سکیں جو جن کے لیے آپ کچھ اور انفارمیشن جاننا چاہ رہے ہیں. اب مجھے اجازت دیجئے, انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے, اللہ پاک ہم سب کی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.